राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे भीनासर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
नारायण। द्रौपदी बोलती है कि आप धर्मराज हो, धर्म को छोड़ करके और कभी इधर उधर कदम भी नहीं रखते, वो तो जंगल में बैठे हैं और दुर्योधन परवाह ही नहीं करता धर्म कर्म की न्याय अन्याय की, जिस किसी तरह से हो अपना राज्य रह जाए, ऐसे स्वार्थ में आकर काम करता है, वो राज्य कर रहा है आराम कर रहा है। तो फिर ये क्या परमात्मा है कि नहीं, वे न्याय करने वाले हैं कि नहीं है, क्या बात है ये? ऐसी द्रौपदी ने शंका करी, उसका उत्तर दिया है महाराज युधिष्ठिर ने, वो सुनने की बात है। कहा कि देवी तेरे मन में ये शंका कैसे हो गई, जो धर्म पालन करने वाले हैं वे दुख पा रहे हैं और पाप करने वाले मौज उड़ा रहे हैं, तो मैं जो धर्म का पालन करता हूं वो सुख के लिए नहीं करता हूं, आराम के लिए राज्य के लिए वैभव प्राप्त हो जाए उसके लिए नहीं करता हूं। धर्म का पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है और मनुष्यता है, ये मनुष्यपना है, ये तो आराम के लिए सुख के लिए भोग के लिए राज्य के लिए जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे धर्म के तत्व को नहीं जानते, वे तो पशु पक्षियों की तरह आराम को ही देखते हैं, सुख भोगते हैं, उसमें राजी रहते हैं। तो मैं धर्म का पालन सुख के लिए राज्य के लिए आराम के लिए नहीं करता हूं, ये बात है। तो मनुष्य मात्र को चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपने कर्तव्य का ठीक तरह से अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करे, ये मनुष्यपना है। अगर वो कर्तव्य का त्याग कर देता है तो गधा है कुत्ता है सुअर है ऊंट है इनसे भी नीचा है, उनसे ये सूर अच्छे हैं, कुत्ते अच्छे हैं, गधे अच्छे हैं उनसे, कितने अच्छा बन क्या है, वे पापों का फल भोग करके मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, वे मनुष्य बनेंगे और जो मनुष्य पापाचार करते हैं वे गधा कुत्ता बनेंगे। तो जितने पशु पक्षी है ये पाप काट रहे हैं और मनुष्य अन्याय करने वाला पुण्य काट रहा है, पहले किए हुए पुण्य और अभी करते ही नहीं तो अपने शुभ कर्म में उसके दुश्मन हो रहे हैं, तो पाप उनको खा जाएगा। धर्म एव अतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का त्याग कर लेते हैं तो धर्म उसका त्याग कर लेता है और जो धर्म की रक्षा करता है तो उसकी धर्म रक्षा करता है। शंका बहुतों को हुई, सब कुछ हुई, और उनके पास राज्य था, पांडवों के पास राज्य नहीं था, वे जंगल से आए थे, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष तक रहे। उसमें दुर्योधन ने ऐसा राज्य किया कि जो राज्य की प्रजा थी, प्रजा को सबको खुश कर दिया। वो देखता है कि युधिष्ठिर से लोग राजी ज्यादा है, तो युधिष्ठिर कैसा बर्ताव करता है, उस बर्ताव को सामने युधिष्ठिर को आदर्श रख करके दुनिया के साथ बर्ताव करता था। तो 13 वर्ष में लोगों को अपने वश में कर लिए, दूसरे राजा लोग से उनके सब मित्रता करके अपना मतलब सिद्ध करने के लिए एकता कर ली, खूब अपना हाथ समगट जमगट जमा लिया। अब युद्ध के समय दुर्योधन के पक्ष में बहुत हो गए, युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में थोड़े रहे। तो दुर्योधन ने देखा कि हमारे पक्ष वाले तो हमारे हैं ही, पांडवों के पक्ष के आदमियों को भी मैं अपने पक्ष में कर लूं तो मेरी विजय हो जाएगी। तो वो गया कृष्ण भगवान को निमंत्रण देने के लिए, क्यों कृष्ण के और अर्जुन के बहुत मित्रता है। तो वो पहले पहुंच गया दुर्योधन, रण निमंत्रण देने लगे, महाराज हमारे और पांडवों के युद्ध होगा, उस युद्ध में आपको पहले निमंत्रण देता हूं, इस भाव से पहुंचा वहां। तो भगवान सोए हुए थे, सिरहाने की तरफ सिंहासन था, उस पर जाकर बैठ गया। भाई जगेंगे तो बात करेंगे। अर्जुन पीछे पहुंचा, पैरों की तरफ हाथ जोड़ खड़े रहा कि महाराज जब जग जाए तो बात करूंगा। भगवान ने नींद खोली, जगे तो सामने अर्जुन को देखा, कहा आओ अर्जुन कैसे आए। दुर्योधन ने देखा कि गजब हो जाएगा, ये पहले अपना काम सिद्ध कर लेंगे तो मेरी बड़ी हार हो जाएगी। तो दुर्योधन बोला कि महाराज मैं पहले आया हूं, और श्रेष्ठ पुरुषों का ये कायदा है, जो पहले निमंत्रण देता है उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और आज संसार में आपके समान कोई बड़ा श्रेष्ठ आदमी नहीं है, तो पहले मैंने आकर के यहां आपको निमंत्रण देने की तैयारी की, आ गया मैं। अर्जुन पीछे आया है तो मेरी पक्ष आपको लेनी चाहिए। तो भगवान बोले, अर्जुन ने बोला, भगवान बोले कि बहुत अच्छा है, आप पहले आए हैं पर जो मिला पहले अर्जुन है, पहली बात है। तो आप पहले आए इस वास्ते मेरी सहायता के पात्र आप हो, और पीछे आया है अर्जुन तो परंतु मिला पहले इस वास्ते ये भी मेरी सहायता के पात्र है। अब मैं अपने 2 विभाग कर देता हूं, एक तरफ तो अस्त्र शस्त्र न चलाकर मैं रहूंगा, और एक तरफ एक अक्षोहिणी हमारी सेना है, हाथी घोड़े पैदल और रथ, ऐसे चतुरंगणी सेना एक अक्षोहिणी है। एक तरफ शस्त्र अस्त्रों से सजी धजी सोना सेना रहेगी, और तुम दोनों में अर्जुन छोटा है, तुम अवस्था में बड़े हो, तो पहली पांति बड़े छोटे की होती है, और मारवाड़ में कहते उछल पांति छोटे की, उछल पांति बड़ी पांति। पहले अर्जुन को कहा कि अर्जुन इन दो में से तुम एक चीज ले लो। दुर्योधन ने घबराया कि ये सब ले लेगा, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं तो आपको चाहता हूं, आप रही हमारे पक्ष में। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, निर्थय को शस्त्र बिना देखे क्या करेंगे, हम सेना चाहिए हमारी, वो सेना ले ली। और वहां से चला, मित्रों से मिला तो कहते आज मैं अर्जुन के मित्र कृष्ण को ठग लिया, उनकी सब अस्त्र शस्त्र सजी धजी सेना मैंने ले ली, आज बड़ा मौज होगी। दुर्योधन तो ऐसे मित्रों से कहता है, इधर भगवान ने अर्जुन को धमकाया, अरे अर्जुन ये अगर मैं पहले मौका दुर्योधन को देता तो दुर्योधन सेना ही लेता, मेरे को थोड़े ही देता, तेरे को मैंने मौका दिया, इसमें तेने क्या गलती करी थी, क्या किया तेने, मैं अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा नहीं तो युद्ध में क्यों लिया तेने, क्या करेगा तू, मेरा क्या उपयोग होगा। अर्जुन ने कहा कि महाराज आप शस्त्र नहीं चलाओगे तो घोड़े भी नहीं चलाओगे क्या, मैं आपको सारथी बनाऊंगा, आप मेरे घोड़े हांकिए। मेरे कई दिनों से मन में थी कि भगवान मेरे सारथी बने। सारथी का तात्पर्य कि हमारी बागडोर आपके हाथ में रहे। घोड़ों की बागडोर होती है, घोड़ों की एक लगाम होती है, एक बागडोर होती है, लगाम पकड़े हुए रहते हैं वो तो सारथी रहता है, बागडोर होती है वो खाली रहती है, जब घोड़े बांधे जाते हैं तब तो वहां से बड़ी रस्सी होती है सूत की, वो बांधी जाती है वहां, उसको बागडोर कहते हैं। बागडोर जिसके हाथ में उसका ही काम होगा, वो ही मुख्य माने जाते हैं। तो मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, आपके अधीन होगा सभी, आप घोड़े चलावें। मैं विजय नहीं चाहता हूं, मैं तो आपको चाहता हूं, आप मेरे सारथी बने। तो भगवान राजी हो गए, तेने अच्छा किया जो मेरे को ले लिया। दुर्योधन निशस्त्र भगवान का क्या करते, शस्त्र चलावे नहीं, निमंत्रण दे, वो भोजन का निमंत्रण थोड़ा ही वादार भोजन कर लू, या तो युद्ध का निमंत्रण है। ऐसे ही उसने किया, भगवान ने वैसे स्वीकार किया। भगवान हरेक विद्या में होशियार है, वो सुनिए, कोई विद्या ऐसी नहीं जो भगवान न जानते हो। अरे भगवान नहीं जानते तो दुनिया में विद्या आई कहां से, भगवान से ही आई सब। जब सृष्टि मात्र भगवान से रची गई तो भगवान अगर सबकी विद्या देने वाले भगवान ही है। हम आदित्य देवा नाम महर्षि नाम सर्वस, भगवान के देवताओं का महर्षियों का सब प्रकार से मैं आदि हूं, मेरे से पैदा ये हुए, मेरे से विद्वान बने, मेरे से शक्तिशाली बने, तपस्वी त्यागी योगी आदि बने, वो मेरे से बने, सब प्रकार से मैं आदि हूं, ये गीता भगवान ने कहा। तो सब विद्याएं भगवान को आती थी, भगवान के विचार उन चरित्रों को देखते हैं तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान केवल पुरुषों का काम ही जानते हैं ऐसी बात नहीं, स्त्रियों का कर्म भी जानते हैं। सखुबाई के यहां सखुबाई बन गए, और पतिव्रता स्त्री जैसे हो इस तरह से सेवा करी, सास ससुर की सेवा करना, घर का काम धंधा करना, रसोई बनाना, झाड़ू देना, रसोई बनाना, बर्तन बर्तन साफ करना, घर वालों के कपड़े धोना, पानी भरना, ये सब आता भगवान को। इस तरह से महाराज काम किया, ये सास ससुर पति तीन थे, सखु भाई के पति थे, सास ससुर थे, को राजी कर लिया, पति को प्रसन्न कर लिया, सास को राजी कर लिया, ससुर को राजी कर लिया। और सास थी वो गांव भर में नामी लड़की सी, थोड़ी कोई बात किया तो लड़ाई कर दिया उसने, ऐसे लड़ने वाली थी। सखू के बालकपन में माँ बाप मर गए थे तो कुटुंबियों ने उसका ब्याह किया, तो वहां तो माँ का प्यार नहीं मिला, बचपन में माँ चली गई। फिर महाराज ब्याह किया तो सास ऐसी मिली, तो बड़ी घबराती वो सखू भाई कि महाराज मैंने क्या कसूर किया जो मेरी ये दशा हुई। ऐसे घबराती भगवान का भजन करती, ये कुटुंब का स्नेह है भगवान के भजन में बाधक होता है, तो ये स्नेह न होने से भगवान की वृत्ति अच्छी लग गई उसकी। घर का सब काम करना पड़ता था, एहसास में वो खाना जो मामूली खाना देती थी, गालियां देती थी, हाथ से मारती कभी, रात से मारती, वो सब सह लेती। गांव की लुगाइयों को दया आती तो वे पानी भरने जाती तो लुगाई साथ हो जाती। उसने कहा कि हे सखू, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? कभी तीर में जाती ही नहीं तो वे ले जाते ही नहीं, और ऐसी क्रूर है सास उनके पास रहती हो। तो सखू ने कहा कि मेरे बहना बहुत है, हमारे माँ बाप के लड़कियां बहुत है, तो कभी मेरी भी बारी आ जाएगी जब मैं भी चले जाऊंगी। कोई सुनने वाले समझे पांच सात दस लड़कियां होगा, वो कहती है अपनी भाषा संगे ये सब हमारे प्रभु की लड़कियां हैं सब, तो इतनी लड़कियां हैं तो अब मेरी बारी देर से ही आवे। भगवान महाराज के माँ बाप के हमारे पिताजी के बहुत परिवार है, कन्या है बहुत है, ऐसे कह देती और भगवान से प्रार्थना करती। तो उसकी बुद्धि बदल गई, उसने देखा है वो भगवान ने बड़ी कृपा की, बचपन में तो माई तो मर गए और यहाँ पर लड़ने वाली सास मिल गई। इसलिए जो भगवान की कृपा मानती, सज्जनों सुख में कृपा कम होती है और दुख में कृपा ज्यादा होती है। दुख में शुद्ध कृपा होती है, निर्मल कृपा केवल कृपा होती है, सुख में तो अपनी सम्मति भी होती है और भगवान की कृपा भी होती है, दुख में हमारी सम्मति तो होती नहीं, शुद्ध कृपा होती है। तो इस बात को जानते थे तो भजन में लगी रहती थी। तो बात इतनी अभी कहना है कि भगवान स्त्री के कर्म को भी जानते हैं, रसोई बनाना भी आता है, झाड़ू देना आता है, पानी भरना आता है, सास ससुरों के कपड़े धोने आता है, घर का सब धंधा करना आता है, बर्तन मलना भी आता है, बाल बच्चों के पालन करने के भी आता है। कोई ऐसी विद्या नहीं जो भगवान न जानते हो, ब्रह्म विद्या लो, योग विद्या लो, जो शक्ति लो, सब अनंत शक्तियां भगवान में, भगवान निर्गुण सगुण साकार निराकार सब कुछ है। तो भगवान सब कब जानते, तो घोड़ा हाँकना जानते भगवान जैसा दूसरा जानने वाला था नहीं। कौरव सेना 11 अक्षौणी थी, तो एक अक्षौणी तो भगवान से दे दी, और उनका शल्य था मामा पांडवों का, वो माता थी ना दूसरी छोटी माधुरी है, माधुरी कुंती माता एक तो एक माधुरी माता, वो माधुरी माता का भाई था शल्य, बहुत बड़ा राजा था वो। वो सेना लेकर के अपने मध्य देश से चला, तो बीच में जहां कहीं ठहरे वहां दुर्योधन ने प्रबंध कर दिया कि खाती करो खूब, जहां पड़ाव पड़ता वहां दुर्योधन के सेवक तैयार, खाना पीना रहना सोना धरना सब तैयार। तो आखिरी विश्राम था वहां पर दुर्योधन पहुंचा, वो भी कहता है मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहते प्रबंध आपका था। हाँ महाराज आपके भांजा ही है, ये भी मामा कहते थे दुर्योधन के, आपके परिश्रम तो नहीं हुआ कि भाई तुमने बहुत सेवा की, हमारे तो बहुत आराम, जैसे राज में रहते जैसे ठाठ में समझे वहीं बहुत छाट से रहते। बोलो मैं खुश हो गया, तुम क्या चाहते हो? तो महाराज मैं यही चाहता हूं आप सेना सहित मेरे पक्ष में रहे। ये दो अक्षौणी सेना लेनी, तो दो अक्षौणी सेना उधर तो घट गई, दो इधर जो बढ़ गई, तो चार फर्क फर्क पड़े, चार सेना। उसी तो सात अक्षौणी सेना, इसे ग्यारह अक्षौणी सेना। जैसे ये माया नसबंदी करती है, गर्भपात करती है, क्या क्या करती है। अब आपके लड़के यहां से, यहां तो जन्म लेते नहीं है, हिंदुओं में जन्म देते नहीं, अगर मनुष्य बनते हैं तो वो मुसलमान ईसाई बनेंगे, वे जितने बनेंगे वो दुगना घाटा होगा आपका। हम अनुमान समझेंगे एक करोड़ सवा करोड़ बालक कम हुए हैं हिंदुओं के, तो वो उधर एक करोड़ जाएगा, दो करोड़ वो बढ़ जाएगा, आप कम से हो जाओगे। ये कमती ज्यादा होने का मेरा नहीं है, राज की दृष्टि से तो बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, हमने सुना है और पक्की बात सुनी है। विदेशी जो कर्जा देते हैं, वो कर्जा देते तो लिखवा देते हैं कि हम कर्जा तब देंगे जब तुम नसबंदी करो, गर्भपात करो, दुनिया न बढ़ने दो तो हम देंगे, ऑपरेशन कराओ, दुनिया न बढ़े ये शर्त, तो शर्त से वे रुपया देते हैं। उनकी अभिसंधि क्या है कि रुपया देकर कर्जदार बना देंगे और संख्या इनकी कम हो जाएगी तो फिर राज्य हमारा हो जाएगा। हम दो और हमारे दो तो मरे हुए खत्म हो जाएंगे। हमने सुना था कि 100 वर्षों में हिंदू जाति नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएंगे, क्यों जन्म को बहने देंगे नहीं दो। और एक ही बात ऐसे ही बोर्ड मैंने देखा कि एक लड़का हो, विवाह होते समय प्रतिज्ञा करो कि हमारा लड़का नहीं हो। हमारी बहनों कहती हम तो गोली खा लेते, हम तो ये करे, बड़ी शर्म की बात। तो इससे से कमती हो गया संख्या, तो मैं संख्या बढ़ाने नहीं, विदेशी तो संख्या घटाने के धुन में है कि संख्या घट जाएगी तो आपसे आप नम्र हो जाएंगे, हम हिंदुस्तान में जाकर बड़े बड़े कारखाना खोलेंगे, गायों मार देंगे, बैल रहेंगे नहीं, तेल हो जाएगा खत्म, हल चला सकेंगे नहीं, तो हमारे कारखाने में मजदूर मिल जाएंगे मुफ्त में, तो हमारे धन पर करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाएंगे। इस वास्ते ये जनता घट जाए, गायों मर जाए, मनुष्य कम हो जाए तो बड़ा अच्छा है, हिंदुओं का नाश हो जाए, ऐसी वे कर रहे हैं। पहले वहां उन लोगों ने ये नसबंदी करना, लूप लगाना, ऑपरेशन करना, ये उन लोगों ने किया, तो बुद्धिमान आदमियों ने देखा कि प्रजा घट जाएगी तो फिर क्या करोगे, तो उन्होंने ये जो कर दिया बंद। हमने सुना है कि राज्य की तरफ से गृहस्थों के घरों में अलग अलग कमरा बनाते हैं, जितने लड़के हो उतने ही कमर बना देंगे, और जो लड़के ज्यादा होंगे उस माता पिता को इनाम देंगे और प्रजा को सहायता कर देंगे जितने संतान अधिक होगा, और जिन माताओं के ज्यादा लड़का लड़की होंगे उनको इनाम देंगे, उनका ऊंचा पद देंगे, उनका आदर करेंगे। ऐसा अपने लोगों में उन्होंने शुरू कर दिया है और यहाँ ये कर दिया है। तो मैंने दो बार तो कहता, तीसरी बार फिर कहता हूँ, हम संख्या बढ़ाने की दृष्टि से नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हिंदू धर्म के जितनी शुद्धता से कल्याण हो जाए, अब उससे कल्याण और जगह होगा नहीं, तो बहनों माताओं कृपा करो, अपने कल्याण करने लिए जीवों को आने दो, तो कोई तो चेतेगा जो पारमार्थिक उन्नति करेगा। हमारा शास्त्र दुनिया भर में भूमंडल मात्र में इतना बढ़िया है जितना किसी भाषा में नहीं है, जितना संस्कृत में है। अब वो अब पढ़ते नहीं, वो अंग्रेजी का ही ज्यादा बोलबाला हो रहा है। अब जानने ही नहीं तो कौन देखेगा। मेरे को साधुओं ने कहा कि स्वामी जी ये बात तो ग्रस्तों की, आप क्यों करते हो, हमारे तो भजन ध्यान की बात बताओ। अरे भजन ध्यान करेगा कौन? क्या ईसाई करेंगे, क्या मुसलमान करेंगे, क्या यहूदी करेंगे, क्या पारसी करेंगे? ये करने वाले जिनकी तो संख्या घटाते रहते हो, कौन पढ़ेगा? आज इतनी संख्या होने पर भी हिंदू कितना संस्कृत का और अभ्यास करते हैं। आश्चर्य की बात है, किस जगह मैंने पूछा ऐसा उत्तर मिला, कल्याण को नहीं जानते हिंदू, कल्याण को नहीं जानते, गीता प्रेस को नहीं जानते। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। और गीता हम पढ़ते ही नहीं, कई आदि गीता पढ़ते नहीं, कई आदि मिलेंगे। ऐसी बढ़िया चीज विदेशी सब जिसका आदर करे, ईसाई मुसलमान जो सज्जन हुए हैं वे गीता की बहुत प्रशंसा करते हैं, हिंदू गीता भी नहीं पढ़ते, क्या करें? अगर उसमें कोई पढ़ेंगे तो ये माताएं बंद कर दिया, बस जन्म ही नहीं पढ़े ही क्यों, तो यह अन्याय मत करो। बात कह रहा था कि भगवान सब काम जानते हैं, स्त्रियों का, पुरुषों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, इनका ही नहीं सूर का काम जानते हैं, मछली का कर्म जानते हैं। भगवान बावन बन करके वो बावन का ब्राह्मण का कर्म जानते हैं, क्षत्रिय और क्षत्रियों का जानते हैं, नंदजारी वैश्य बन के वैश्यों का भी जानते हैं, शूद्रों का कर्म जानते हैं, अंतजों का कर्म जानते हैं, भगवान सब विद्याओं जानते हैं। गीता कहती है माम आश्रय यतन, ये यतन करे तो मेरा आश्रय लेकर करे। और अंत में कहा माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरी एक के शरण हो जाओ, सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। कोई चिंता करने जाते भगवान के भजन से निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, भगवान के शरण हो गए। बड़ी विचित्र बात है, भगवान के शरण होने से कितनी शक्ति, कितनी विद्या, कितनी योग्यता, कितना बल, कितनी बुद्धि आती है जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि अपार है भगवान, सब अनंत है भगवान, विद्वान भी अनंत, बलवान भी अनंत, अनंत 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 है। उस भगवान के चरणों के शरण लो। तो पांडवों के पक्ष में भगवान थे, तो बात कह रहा था कि लोग कहते हैं दान पुण्य धर्म करते हुए दुख पा रहे हैं, पांडव धर्म का पालन करते थे जंगल में रहते थे और दुर्योधन पाप करते थे मौज हुआ करता, पर आज दुनिया के हृदय में युधिष्ठिर राज्य करते हैं और दुर्योधन को थूकते ऊपर, बड़ा दुष्ट था, गए सबके हृदय से बेचारा नाम उठ गया। जैसे केकई राम जी की माँ थी पर केकई नाम की एक नहीं मिलेगी, आप पूछ लो सबको, कोई केकई नाम की नहीं मिलेगी। माँ थी पर राम जी को वन में भेज दिया, बिचारी का नाम उठ गया। दुर्योधन नाम नहीं मिलता, कंस नाम नहीं मिलता, युधिष्ठिर नाम का मैंने सुना है, अर्जुन नाम का सुना है, कृष्ण नाम के कई आदि सुने हैं, गीता है, सीता है, राधा है, ऐसे नाम हमने बहुत सुने हैं। आपकी बच्चियों के नाम है ऐसे, पुरुषों के नाम है, कृष्ण वासुदेव नामोदर हरि माधव मुकुंद, ऐसे नाम है। तो दुराचार करने वाले का संसार में नाम उठ जाता है, उसके चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। काव्य में लिखा है कि जो रामायण देखी उसमें रामायण एक राम का चरित्र है, एक रावण का चरित्र है, तो रामादिवत वर्ष न रावणादिवत, ये सिद्धांत बताया। रावण का चरित्र इसलिए बताया कि ये करना नहीं चाहिए, राम जी का चरित्र बताया कि ऐसे करना चाहिए। ऐसे कंस और कृष्ण एक ही बड़ी राशि के थे, तो राम और रावण, कृष्ण और कंस। मैं कृष्ण नाम से उद्धार होता है, लोग आचरण करते हैं कृष्ण नाम क्यों मिलेगा, कंस नाम एक आदमी नहीं मिलेगा, वो तो कोई बोलो भाई कंस नाम वाला कोई आदमी, बेचारा नाम उठ गया, कितनी निंदा होती है। कृष्ण की तरह आचरण करो, कंस की तरह नहीं, ऐसी बात आती है। तो भाइयों, ये जो वहम होता है कि अच्छे आचरण करने वाले दुख पाते हैं, 11 करोड़ सेना वाले सब मर गए, 100 बेटा थे धृतराष्ट्र के, एक नहीं बचा। पांडु महाराज के पांडव थे 5, एक नहीं मरा, पूरे के पूरे बच गए, एक नहीं मरा। अंत में विजय धर्म की होती है, पहले कष्ट आता है, धर्म पालन करने से लक्ष्मी आती और आराम रह दो, धर्मात्मा की टोली बन जाएगी, पर तो थोड़ा कष्ट आता है भाई। धर्म पालन कर तपस्या करता है तो कष्ट होता है, पर तपोबल बढ़ता है उसका, इसलिए की बात है। तो ये जो बहम होता है कि भाई ये क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज को द्रौपदी ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं आराम और सुख के लिए धर्म का पालन नहीं करता हूँ, आराम और सुख के लिए धर्म का पालन करता है वे धर्म के तत्वों को नहीं जानते, वे तो आराम जानते, सुख जानते, संपत्ति जानते, जो सुख दूर तो सूर ही जानता, गधा भी जानता है, कुत्ता भी जानता है, इसमें क्या अलग बात हुई। कुत्ता ही इच्छे पड़ेगा जबरदस्ती खा जाता है, ले जाता है, अपना करता है, ऐसे जबरदस्ती काम करे तो उनमें कुत्ता में क्या भर गया भाई। तो वास्तव में धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। कहते हैं महाराज धर्मात्मा दुख पा रहे हैं, इसमें एक बात बता मैं आपको, ध्यान देकर सुने कृपा करिए। एक आदमी गांव में खेती करता है और रोटी नहीं मिलती है अभी वर्तमान में, और ये खेती करता ही नहीं, खूब खाता है मौज से, धनधानी खूब है, तो अभी खेती नहीं करता है तो पहले गए जमाने में खेती की थी उसका धान है, अब खेती नहीं करते तो अगर इस जमाने में देखा जाएगा, और अभी खेती करता है उसके अनाज नहीं है, पर खेती में अनाज होगा तो ये डर होता है, पहले किए हुए कर्मों का फल यहाँ भोगा जाता है, यहाँ किए हुए कर्मों का फल आगामी भविष्य में भोगा जाता है। तो पहले कर्म अच्छे किए हैं वे कर्मों के फल से सुखदायी मिले हैं। तो आप चारों आदमियों को देखेंगे, धर्म पुण्य करते हैं, नेकी में चलते हैं, धनी है, और नेकी में चलते हैं निर्धन है, और झूठ कपट बेईमानी करते हैं धनी है, झूठ कपट करते हैं रोटी नहीं मिलती है, रामायण माया है, पाप कर तो निशिवास जाही नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही, लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, पेट पूर्ति के लिए अन्न नहीं मिलता, और पाप कर तो निशिवास रात दिन पाप करने में कमी रखते ही नहीं, हम सब जीव जीव गण घाती, कोल किरात कह रहे हैं हम तो जीवों के घात करने वाले हैं। महाराज भंग पधारे तो कोल किरातों ने कहा हमारी बड़ी सेवा ये है, आपकी कहीं वस्तु पड़ी जाए बर्तन हम चोरी नहीं करेंगे, ये हमकी बड़ी भारी सेवक आई, इनमें बसा बासन बसन चुराई, आपके कड़पे बासन चोरी नहीं करे, ये हमारी बड़ी सेवा है। आप सेवा मान लेना, बोलो नहीं कटी पर, ये तो भगवान राम जी की कृपा है जो आप लोगों के दर्शन हुए, तरह तरह के कंद मूल फल अंकुर लाला देते हैं, शहद ला कर देते हैं, चीजें ला कर देते हैं, लोग ये मैं ये गुण है इसमें, ये गुण है ये लोग, आप भी पैसा देते हैं, नहीं हम पैसा ले जाएंगे, ये तो हम अंदर से ले आते हैं, हमारे क्या पैसा लगा है, ऐसे मेरा शुद्ध हो गए। और वे जितने खुश हुए हैं इतने खुश ऋषि मुनि नहीं हुए, देवता नहीं हुए। और देवताओं से ऋषि मुनियों से भगवान इतने खुश नहीं हुए जिसने उसको किया तो जीव पितु बालक में जैसे माता तोतली बाणी सुनकर बालकों पर खुश होते हैं ऐसे कोल किरातों पर भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। आप रामायण का प्रसंग पढ़ो देखो आप कैसे राजी होते हैं भगवान। वे कहते महाराज हम आपको शिकार खिलाएंगे, आपको कंदमूल फल खिलाएंगे और यहाँ के पर्वत है या नदियाँ है या झरना है या तालाब है सरोवर है वो सब आपको दिखा देंगे। पग पग जोहा हमारे पग पग भी सब जगह हमारी देखनी भूमि है। अब जंगल में घूमते ही थे तो आपको दिखाएंगे, अब आपकी सेवा करेंगे। हम सेवा का परिवार समझता परिवार कैसे तो हम सेवक हैं। तो उनकी बात सुन के भगवान राजी होते ऋषि मुनि तो भजन करना है घर में देवता भाई तुम देवताओं में सुख भोगो राक्षसों का डर नहीं होगा। तो उनके स्वार्थ था इनके स्वार्थ कुछ नहीं। और कहा है कि मारा इंद्र पात किरात मिताई किरात से मित्र हो जाएगा क्या करेगा कि बड़ी सुधार रख हो जाएगा इंद्र पात किरात मिताई लगकर सूखी लकड़ी लगाकर आप वो दिन रसोई बनाओ ये हमारे किरात के पास में ये बात है बोला। तो भगवान उनसे बड़े राजी होते हैं कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान ने सब काम किया तो आपके कर्म पहले के जैसे हैं वैसे आपको भोगने पड़ेंगे और अब ही काम करोगे वो परलोक में आपको मिलेगा। इस बात से आप घबराए नहीं। और अच्छा अच्छा काम करने वाले भी अच्छे धनी आदमी हैं, मौज में रहते हैं, धन न होने पर भी बड़े सुख से आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके दुख नहीं है। मेरे एक बात याद आ गई जरा उद्दंडता की है पर बात याद आ गई। बड़े बड़े धनी आदमियों को सुख नहीं मिलता वो हमारे को सुख मिलता है। उनके पास इतने आदमी नहीं आते हमारे पास आते हैं। उनको चीज इन घरों में बढ़िया से बढ़िया होती है वे माताएं हमारे ला देती। हम हमारे महाराज के साथ गुरु जी के साथ चातुर्मास में रहते थे तो गरीबों के घरों में जाते थे गरीब घरों में। तो मेरे सामने बात आई है छोरा कहता कि माँ मेरे ऊपर चिड़ी दी है साधु आए तो चिड़ी दे चिड़ी घी डालती है हमारे को नहीं देती छोरों को नहीं देती वो हमारे गालती। हमारे महाराज का स्वभाव था साधारण साधारण रोटी क्या करे गेहूं का फुलका बना दे ऊपर चीनी रख दे ऊपर घी डाल दे चीनी हो जाए ऐसी तर तर हो जा पाओ। तो हमारे महाराज क्या करते ऊपर की रोटी चूर करके और बच्चों को देते थे। बच्चे छोटे छोटे खेलते लेते माँ बाप माने कि महाराज प्रसाद दे रहे हैं तो इसलिए हमारा महाराज दिया करते थे। मेरे सामने की बात है तो हमारे कितना आराम मिलता है। एक आदमी अपना आराम चाहे तो उसको आराम ज्यादा मिलेगा कि जिसके सैकड़ों आराम चाहे उसको ज्यादा मिलेगा। तो हम घाटे में कैसे रहे हमारे वो कई आदमी कहते हैं अब क्या कहें आ जाती है मन में ये बढ़िया नहीं है चीज। परंतु बात लोग कहते हैं स्वामी जी पैसों को समझते नहीं पैसों का तत्व नहीं जानते। हम कहते हैं आपसे दूना जानते हैं हम आपसे खड़ी जानते हैं कहते हम जानते नहीं भाई हमारे पता नहीं भैया पैसों का तो हम जानते हैं स्वामी को पता नहीं। हाँ भाई सच्ची बात है परंतु कभी कभी ये बोलना आता है कह देता हूँ तुम तो रुपया रखना जानते हो हम रखना भी जानते हैं छोड़ना भी जानते हैं आपको छोड़ना नहीं आता है आपको रखना ही आता है हमारे दूरे जानते तुम्हारे से हमने कथाएं की है भेंट ली है पूजा करवाई है ये हमने किया है रुपये हमने रखे हैं भेंट पूजा नहीं है। तो हम रुपया रखना न रखना दोनों को जानते हैं आप एक जानते हो। इस भाई अपनी दृष्टि में कोई अनजान नहीं होता है। संसार की दृष्टि है कि भगवान ने शेर भर अकल बनाई जिसमें एक आना में तो सबको सजाया 15 लाख का हमारे में हमसे बढ़ से बड़े अकल वाले हरेक भाई मन में ये बात होती है तो हम क्यों वंचित रहे भाई हम अच्छे हैं तो बड़े आराम से रहते हैं बड़ा सुख रहता है जहाँ जाओ वहाँ ये आपके परिवार छोटा है हमारे परिवार बहुत बड़ा है जहाँ जाए वही परिवार जहाँ जाए वही सैकड़ों हजारों आदमी हमारी बात सुनते हैं वो लोग कम कैसे रहे तुम्हारे पीछे तो नहीं रहते बहादुर से डूंगर महाराज डूंगर जी महाराज डूंग जी रे बहादुर थे आसाम के तुम सुखिया शहर भर में सबसे ज्यादा जमीन उनकी बाजार का बाजार उनकी जमीन में बसा हुआ ऐसे थे काम पड़ा तो मैं कहा तो आपके धन अधिक है आप घमंड करते हो पर हमारे धन नहीं है इसका हम घमंड करते हैं घमंड में कम नहीं है अभिमान में कम हो गई है आपके धन है इस बात कभी करते हमारे धन नहीं ऐसे ही करते अभिमान में कम कैसे हमारे दिल में अभी अभिमान होते तो आप पास धन है हमारे पास धन नहीं है इसका ही अभिमान है तो ये बात है महाराज तो आपके वहम है कि इन चीजों से सुख होता है सुख नहीं होता है खावे कमावे ऐसा हो वही ठीक होता है युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा है वन पर्व के अंत में कथा आती है कि मोद किसको है तो पंचम षष्ठ शाकम प्रशस्ट पंचम षष्ठ लेने शाकम पचित निगृह भिन्न प्रवास प्रयास भिन्न कर्ज भिन्न मोद मदद करते हैं मोद मन को आनंद इसमें किसमें है कहते हैं कि पांचवें छठे टंक में शाक पत्ती वाले खाने घर में नहीं आते परंतु अपने घर में छप्पड़ में बैठे हैं कहीं घूमना नहीं पड़ता और कर्जा ऊपर नहीं है वो मोद लगते धनी को नहीं बताया है उसको मोद सभारीचर मोदते वो भारीचर सुनो तुम यक्ष तो ऐसे अपना साधारण कमाते हैं खाते हैं बड़े खुशी है बड़े मौज में रहते हैं हमारे एक संत थे आत्मानंदी बात याद आ गई क्यों कह गए कलकत्ता में बड़े धनी आदमियों के मुनीम थे तो वे कहते थे कि सुबह उठे तो ऊपर से देखा तो झांका ढूंढने वाले फुटपाथ पर पड़े झांका सिरा रखा है तो धनी बोले कि मनु जी हमारे ये सुखी है दिन भर कमा ले खा ले और सोचे मौज से झांका सिरा ने दिया और टोकरी झांका कहते उसको जब टोकरी में चीज ढोकर उनको बिछा दी उन्हें वहां पहुंचा दी वहां पहुंचा दी सोते मौज से फुटपाथ पर अभाव तो ये धनी खुद देखते हैं कि ये सुखी है कोई कर्जा नहीं कोई टैक्स नहीं उस पर कोई बात नहीं मौज में रहते तो धन होने से सुखी हो जाए ये बात नहीं है बहम है आपको कि धनी बड़े सुखी है उनके हृदय की बात पूछे तो पता लगे मेरे बात काम पड़ा है मेरे धनियों में रहना काम पड़ा है गरीबों में रहने का भी काम पड़ा है तो मैंने देखा है कि गरीब आपकी दृष्टि से है कब खाते अपने मौज से रहते खेती कर देते अनाज हो जाता है कहते महाराज राम जी सास बाग दे सास बाजरी खेती में अनाज हो जाए गंगा दूसरी बार समझे दो दो लोटा दे नहीं मैं बोलना इतने दस सरकार और नहीं बोलना ऐसी बात है तो धन में ज्यादा सुख नहीं है धन के उपयोग में है एक मार्मिक बात बतावे वस्तुओं में सुख नहीं है वस्तुओं के सदुपयोग में है ऐसे परिस्थिति में सुख नहीं है परिस्थिति के सदुपयोग में है दुख का बीमारी का सदुपयोग करो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सुख का सदुपयोग करो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो सदुपयोग की महिमा है वस्तुओं की महिमा नहीं है मनुष्य जन्म की महिमा कहते हुए नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी नरक स्वर्ग मनुष्य में काम करके नर्क मिलती है, स्वर्ग मिलता है, अपनी मुक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, 84 लाख जोड़ी मिलती है। ये फल बताया, उसमें नर्क भी आया, नरक स्वर्ग। तो संसार में संसार नरक को मिलता है, जो अधिक पाप करता है उसको नरक मिलेगा। तो नरक का मिलना ठीक है कि भगवान का मिलना, भगवान की भक्ति मिलना, ज्ञान वैराग्य मिलना, ये भाग्य वाला की बात है। संत विरक्त तो त्यागी होते हैं, वो धनियों के पीछे पीछे नहीं फिरते, धनी उनके पीछे पीछे फिरते हैं। ऐसी बात देखिए भाई, हमने देखा है। इस वास्ते ये सुख तो मिलेगा, कब मिलेगा? ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, ना सुख काजी पंडित और ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक है, तृष्णा रोग गया। भीतर में तृष्णा है, वो तृष्णे का तरण आए थे, ज्वाला जल रही है, भीतर में आग लग रही है, हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं। गरीबों को लूटते खसोड़ते हुए दया नहीं आती उनको, जो धनी आदमी है, कई ऐसे सब जगह धनियों में भी अच्छे मंदे होते हैं, गरीबों में अच्छे मंदे होते हैं, साधुओं में अच्छे मंदे होते हैं, गृहस्थों में अच्छे मंदे होते हैं, माताओं में अच्छे मंदे होती है, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया होती है। रामायण की कथा में शूर्पणखा की कथा भी आती है, सीता माता की कथा भी आती है, स्त्री होती स्त्री वो एक जाती है। माता सीता का नाम लेने से लड़कियों का सीता माता सीता माता सीता माता रोजिना सुबह और सात सार नाम ले तो बड़ी प्रतिपत्ता ऊंची बन जाएगी, सीता माता के नाम लेने। अनुसुईया जी प्रतिपत्ता में बड़ी सच हुई है, उसने कहा कि सीता तेरा नाम लेने से स्त्रियों प्रतिपत्ता बन जाएगी, तेरा नाम लेने से तेरे को याद कर रहे कहू कथा संसार हित, संसार के हित के लिए तेरे को मैंने बातें बताई है, तो मेरी शिक्षा नहीं है। तो मतलब राम जी बहुत प्राणों से प्यारे होते हैं, अमित दान भक्ता वेदे, अमित दान भक्ता वेदे, भक्ता शब्द अमित दान देता है, मौत तो नहीं है, उसकी सेवा करो। ये सीता जी को बात बताई अनुसुईया जी ने, बड़ी प्रतिबद्धता थी, बूढ़ी नाई थी, सीता जी छोटी थी सामने, तो ऐसी कथा कही है। कथा कहते हुए कहा बेटी तेरा नाम लेने से प्रतिबद्धता बन जाएगी, तुम तो श्रेष्ठ हो ही, संसार के उद्धार के लिए मैंने तेरी कथा कही है, ऐसे नहीं कि तेरे में गुण नहीं है मैं नया बता दूं, ऐसा क्या बताऊं। तो सब वर्गों में सब तरह की स्त्रियां होती है, सीता जी भी होती है, शूर्पणखा भी होती है, राम जी भी होते हैं, रावण भी होते हैं, निषाद राज वो भी होता है, भीलकोज भी होते हैं, सब तरह के होते हैं सब में। तो अच्छा होता है वो जावे कहाँ ही, नग मोती दरिया नागन मारे इष्ट को भावे ना फिरिया, नग है मोती है समुद्र है, ये कहाँ ही जाए वहां पर भी इज्जत होती है, मोती बढ़िया ऐसा, इस मोती का तो पानी बहुत बढ़िया है, ये रसन बढ़िया है, इसका पानी कितना तेज है बढ़िया है, तो सब क्षेत्रों में उसकी प्रशंसा होती है। और ये अपना इष्ट वैसा वैसा रखते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने 13वां वर्ष अज्ञातवास बिताया, उसमें महाराजा विराट की बड़ी सेवा की, कंक भट्ट बने वो, ब्राह्मण बने वो रहे, वल्लभ रसोईया बने महाराज कौन भीमसेन, और द्रौपदी सैलिन जी बने, सैलिन ध्यान मस्त राज भवने घृष्ण चंदनम, सैलिंद्री वो होती है जो स्त्रियों का श्रृंगार जानती है और श्रृंगार करती है राजरानियों का राजकुमारियों का, और मेहंदी लगानी कैसे कैसे लगानी कैसे कैसे करना श्रृंगार कैसे करा क्या क्या ये सब जानती थी, चंद्र घुसती थी लगाती थी, सैलिंद्री बड़ी होगी द्रौपदी सब काम करती थी। पहले कह दिया है कि मैं किसी पुरुष की सैया नहीं बिछाऊंगी, मैं झूठे बर्तन नहीं मांझूंगी और काम करूंगी सब आपका, बस नीचा काम नहीं करूंगी। तो सुदेशना ने रख लिया और ऐसा काम किया महाराज जो खुश हो गया, रणवास सब खुश हो गया, बहुत ही सुंदर थी। ये हम आप पैदा होते जैसे नहीं हुई थी। यज्ञ की वेदी से 7 वर्षों की बालिका पैदा हुई थी, पैदा हुई उस समय 7 वर्षों की थी, इतनी कन्या प्रकट हुई, बहुत ही सुंदर थी। ऐसा रूप पृथ्वी पर एक को मिलता नहीं, इतना सुंदर रूप था, परंतु अपनी मर्यादा में कितनी थी महाराज। तो सब जगह सब आदमी होते हैं, तो पूर्व के किए हुए कर्मों के फल के अनुसार यहाँ पर सुखदायी दुखदायी परिस्थिति बनती है। कल्याण के लिए सुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग होता है, दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग होता है। सुखदायी का उपयोग करने में कठिनता ज्यादा होती है, दुखदायी की परिस्थिति में स्तर करने में बड़ी सुगमता होती है, बड़ी सरलता होती है। तो इस वास्ते जिस स्थिति में आप लोग हैं, कभी ऐसा न करें कि भाई धर्म भजन ध्यान करते हैं, इस वास्ते बड़ी ज्यादा ही दुख हो, ये कार्य नहीं है। भजन ध्यान करने वाले बड़े मौज से रहते, आनंद से रहते, और पाप करने वाले भी आनंद से रहते हैं, और पुण्य करने वाले भी दुख पाते हैं, भजन ध्यान करने वाले भी कष्ट उठाते हैं, पूरे जन्मों के अनुसार परिस्थिति मिलती है। परंतु कल्याण करने में अच्छा काम करते हुए अपना लाभ ले लेते हैं, दरिद्र अवस्था में भी कल्याण कर देते हैं, धनवंत अवस्था में भी कल्याण कर देते हैं। और कल्याण धनी आदमी ले रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति अगर धनवानों को ही होती हो, कोई दान पुण्य कर सकते था, तो हमारे देश को क्या दशा हो जाए। तो भगवान दान पुण्य तो आदमी से नहीं मिलते हैं, वो तो भाई भावक ग्राही धन आदमी है, वही तो भगवान तो भावक होता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बिजली घर पाए, बिजली घर में वहां साग पत्ती पाई भगवान ने, दुर्योधन का मेवा त्याग, बहुत बढ़िया रसोई थी। दुर्योधन ने कहा कि महाराज हम आपके समान सगा संबंधी है, इस वास्ते हमारा भोजन करो यहाँ पर। और उस पर वो कृत्रिम मिश्री भोजन सूची के घर जाए, आपने भोजन किया क्या किया, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तो भगवान ने साफ कह दिया, साफ कर दिया, तो भोजन वो भी कही है राजा, राजन दो तरह से भोजन होता है, एक भूखा मरते हो तो कहीं कहीं खाना पड़ता है, एक जहाँ प्रेम हो तो नहीं हो तो कुछ रूप खाना ही पड़ता है। तो विपत्ति हमारे नहीं है, सब प्रेम तेरे नहीं है भाई, इस वास्ते तेरा नहीं पाएगा, हम तो जहाँ प्रेम है वहाँ पाएंगे। भूखों से प्रेम नोली, भगवान प्रेम के भूखे, तो आप जिस अवस्था में उसी अवस्था में भगवान के विचार, भगवान बड़ी कृपा करेंगे, स्नेह करेंगे और उद्धार करेंगे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों मौका मिल गया है मनुष्य शरीर का, और मनुष्य शरीर में भी अभी मिल गया है सत्संग का मौका, बहुत भगवान की विशेष कृपा है, अधिक से अधिक लाभ ले लो। दिन जा रहे हैं, एक दिन तो चल रहा है, 2 दिन हो गए हैं, 3 महीना खत्म हो जाते देखते देखते, जितना लाभ अधिक से अधिक ले लो, लगो भगवान में, ब्रह्मचर्या का पालन करो, संयम रखो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो, किसी का नुकसान मत करो, सर्वे भवंतु सुखिनः भावयोः, सबके सब सुखी हो जाए, निरोग हो जाए, आनंद मंगली करते रहे, ऐसा मन में शुद्ध भाव रखो तो दुनिया तो होगी ही नहीं, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, क्यों भाव आपका श्रेष्ठ हो गया है। संसार में वस्तु भाव से मिलती है, परमात्मा के यह भाव अपने अधीन है, संसार बाजार का भाव बाजार के अधीन है, आपके अधीन नहीं है, और ये भगवान मिले वो भाव अपनी भक्ति के अधीन है, सारे से इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस वास्ते आप कृपा करके भगवान के भजन में तत्परता से लगे रहो, अपने अपने अच्छे अच्छे आचरण की बात है, सुंदर सुंदर बात है, उसके अनुसार जीवन बनाओ, महान पवित्र निहाल हो जाओगे। नारायण नारायण।